ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಬ್ ಹಮ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕೆ ಪಾಂಚವೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಾ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ಪಾಠ ಕರೆಂಗೆ ಔರ್ ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕಾ ಪಾಂಚವೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಾ ಶ್ಲೋಕ ಸಬ್ ಏಕ್ ಸಾಥ್ ಪಾಠ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಪಶ್ಚಾತ್ ಉಸ್ಕಾ ಅನುವಾದ ಕಾ ಚರ್ಚಾ ಕರೆಂಗೆ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕೆ ಪಾಂಚವೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಾ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ. ಶಿವಜಿ ನೆ ಕಹ ರಹೆ ಹೈ ದೇವಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಪಾರ್ವತಿ ಅಬ್ ಸಬ್ ಲೋಗೋ ದ್ವಾರಾ ಸನ್ಮಾನಿತ ಪಾಂಚವೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಾ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಸಂಕ್ಷೇಪ ಸೆ ಬತಲಾತಾ ಹೂ, ಸಾವಧಾನ ಹೋಕರ್ ಸುನೋ. ಮದ್ರ ದೇಶ ಮೇ ಪುರುಕೃತ್ಸ್ಪುರ್ ನಾಮಕ ಏಕ್ ನಗರ ಹೈ, ಉಸ್ಮೇ ಪಿಂಗಲ್ ನಾಮಕ ಏಕ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರಹತಾ ಥಾ. ವೋ ಬೇದ ಪಾಠಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಕೋ ವಿಖ್ಯಾತ ವಶ ವಂಶ ಮೇ ಜೋ ಸರ್ವದಾ ನಿಷ್ಕಲಂಕ ಥಾ ಉತ್ಪನ್ನ ಹುವಾ ಥಾ. ಕಿಂತು ಅಪನೆ ಕುಲ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಉಚಿತ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೆ ಸಾಧ್ಯಾಯ ಕೋ ಛೋಡಕರ್ ಢೋಲ್ ಆದಿ ಬಜಾತೆ ಹುಯೆ ಉಸ್ನೆ ನಾಚ ಗಾನ ಮೇ ಮನ್ ಲಗಾಯಾ. ಗೀತ ನೃತ್ಯ ಔರ್ ಬಜಾ ಬಜಾನೆ ಕೆ ಕಲಾ ಮೇ ಪರಿಶ್ರಮ ಕರ್ಕೆ ಪಿಂಗಲ್ ನೆ ಬಡಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ಲಿ ಔರ್ ಉಸಿ ಸೆ ಉಸ್ಕಾ ರಾಜಭವನ್ ಮೇ ಭೀ ಪ್ರವೇಶ ಹೋ ಗಯಾ. ಅಬ್ ವೋ ರಾಜಾ ಕೆ ಸಾಥ್ ರಹನೆ ಲಗಾ ಔರ್ ಪರಾಯಿ ಸ್ತ್ರೀಯೋ ಕೋ ಬುಲಾ ಬುಲಾ ಕರ್ ಉನ್ಕಾ ಉಪಭೋಗ ಕರ್ನೆ ಲಗಾ. ಸ್ತ್ರೀಯೋ ಕಿ ಸೇವಾ ಔರ್ ಕಹಿ ಉಸ್ಕಾ ಮನ್ ನಹಿ ಲಗ್ತಾ ಥಾ. ಧೀರೆ ಧೀರೆ ಅಭಿಮಾನ ಬರ್ ಜಾನೆ ಸೆ ಉಚ್ಛೃಂಖಲ ಹೋಕರ್ ವೋ ಏಕಾಂತ ಮೇ ರಾಜಾ ಸೆ ದೂಸರೆ ಕೋ ದೋಸ್ ಬತಲಾನೆ ಲಗಾ. ಪಿಂಗಲ್ ಕಿ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಥೀ ಜಿಸ್ಕಾ ನಾಮ ಥಾ ಅರುಣಾ. ವೋ ನೀಚ ಕುಲ್ ಮೇ ಉತ್ಪನ್ನ ಹುಯಿ ಥೀ ಔರ್ ಕಾಮೀ ಪುರುಷೋ ಕೆ ಸಾಥ್ ವಿಹಾರ ಕರ್ನೆ ಕಿ ಇಚ್ಛಾ ಸೆ ಸದಾ ಉನ್ಹಿ ಕಿ ಖೋಜ್ ಮೇ ಘುಮಾ ಕರ್ತಿ ಥೀ. ಉಸ್ನೆ ಪತಿ ಕೋ ಅಪ್ನೆ ಮಾರ್ಗ ಕಾ ಕಂಟಕ ಸಮಜ್ ಕರ್ ಏಕ್ ದಿನ ಆಧಿ ರಾತ್ ಮೇ ಘರ್ ಕೆ ಭೀತರ್ ಹಿ ಉಸ್ಕಾ ಸೀರ್ ಕಾಟ್ ಕರ್ ಮಾರ್ ಡಾಲಾ ಔರ್ ಉಸ್ಕಿ ಲಾಶ್ ಕೋ ಜಮೀನ್ ಪೆ ಗಾಡ್ ದಿಯಾ. ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಣೋ ಸೆ ವಿಯುಕ್ತ ಹೋನೆ ಪರ್ ವೋ ಜಮ್ ಲೋಕ್ ಮೇ ಪಹುಂಚಾ ಔರ್ ಭೀಷಣ ನರಕೋ ಕಾ ಉಪಭೋಗ ಕರ್ಕೆ ನಿರ್ಜನ ಬನ್ ಮೇ ಗಿದ್ಧ ಹುವಾ. ಅರುಣಾ ಭೀ ಭಗಂದರ್ ರೋಗ ಸೆ ಅಪನೆ ಸುಂದರ್ ಶರೀರ ಕೋ ತ್ಯಾಗ ಕರ್ ಘೋರ್ ನರಕ ಭೋಗನೆ ಕೆ ಪಶ್ಚಾತ್ ಉಸಿ ಬನ್ ಮೇ ಶುಕಿ ಹುಯಿ. ಏಕ್ ದಿನ ವೋ ದಾನಾ ಚೂಗನೆ ಕಿ ಇಚ್ಛಾ ಸೆ ಇಧರ್ ಉಧರ್ ಫುಡಕ್ ರಹಿ ಥಿ. ಇತನೆ ಮೇ ಹಿ ಉಸ್ ಗಿದ್ಧ ನೆ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮ ಕೆ ಬೌಡ್ ಬೈರ್ ಕಾ ಸ್ಮರಣ ಕರ್ಕೆ ಉಸೆ ಅಪನೆ ತೀಖೆ ನಖೋ ಸೆ ಫಾಡ್ ಡಾಲಾ. ಶೂಕಿ ಘಾಯಲ್ ಹೋಕರ್ ಪಾನಿ ಸೆ ಭರಿ ಹುಯಿ ಮನುಷ್ಯ ಕಿ ಖೋಪಡಿ ಮೇ ಗಿರಿ. ಗಿದ್ಧ ಪುನಃ ಉಸ್ಕಿ ಔರ್ ಝಪಟಾ. ಇತನೆ ಮೇ ಹಿ ಜಾಲ ಫೇಲ್ನೆ ವಾಲೆ ಬಹೆಲಿಯಾನ್ ಬಹೆಲಿಯೋ ನೆ ಉಸೆ ಭಿ ಬಾನೋ ಕಾ ನಿಶಾನ್ ಬನಾಯಾ. ಉಸ್ಕಿ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮ ಕಿ ಪತ್ನಿ ಶುಕಿ ಉಸ್ ಖೋಪಡಿ ಕಿ ಜಲ್ ಮೇ ಡೂಬಕರ್ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಚುಕಿ ಥೀ. ಫಿರ್ ವೋ ಕ್ರೂರ ಪಕ್ಷಿ ಭಿ ಉಸಿ ಮೇ ಗಿರ್ ಕರ್ ಡೂಬ ಗಯಾ. ತಬ್ ಜಮರಾಜ್ ಕೆ ದೂತ್ ಉನ್ಕೆ ಉನ್ ದೋನೋ ಕೋ ಜಮರಾಜ್ ಕೆ ಲೋಕ ಮೇ ಲೇ ಗಯೆ. ವಹಾ ಅಪನೆ ಪೂರ್ವಕೃತ ಪಾಪ ಕರ್ಮೋ ಕೋ ಯಾದ ಕರ್ಕೆ ದೋನೋ ಹಿ ಭಯಭೀತ ಹೋ ರಹೆ ಥೆ. ತದ ಅನಂತರ ಜಮರಾಜ್ ನೆ ಜಬ್ ಉನ್ಕೆ ಘೃಣಿತ ಕರ್ಮೋ ಪರ್ ದೃಷ್ಟಿಪಾತ ಕಿಯಾ ತಬ್ ಉನ್ಹೆ ಮಾಲೂಮ್ ಹುವಾ ಕಿ ಮೃತ್ಯು ಕೆ ಸಮಯ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಖೋಪಡಿ ಕೆ ಜಲ್ ಮೇ ಸ್ನಾನ ಕರ್ನೆ ಸೆ ಇನ್ ದೋನೋ ಕೋ ಪಾಪ ನಷ್ಟ ಹೋ ಚುಕಾ ಥಾ. ತಬ್ ಉನ್ಹೋನೆ ಉನ್ ದೋನೋ ಕೋ ಮನೋಬಾಂಛಿತ ಲೋಕ ಮೇ ಜಾನೆ ಕಿ ಆಜ್ಞಾ ದಿ. ಯೇ ಸುನ್ಕರ್ ಅಪನೆ ಪಾಪೋ ಕೋ ಯಾದ ಕರ್ತೆ ಹುಯೆ ವೇ ದೋನೋ ಬರೆ ವಿಸ್ಮಯ ಮೇ ಪಡೆ ಔರ್ ಪಾಸ್ ಆಕರ್ ಧರ್ಮರಾಜ್ ಕೆ ಚರಣೋ ಮೇ ಪ್ರಣಾಮ ಕರ್ಕೆ ಪೂಜನೆ ಲಗೆ. ಭಗವಾನ್ ಹಮ್ ದೋನೋ ನೆ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮ ಮೇ इतने घृणित पाप का संचय किया है, फिर हमें मनोवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण है बतलाइए। जमराज ने कहा, गंगा के किनारे बट नामक एक उत्तम ब्रह्मज्ञानी रहते थे। वे एकांत से भी ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष न रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा का नियम था। 5वें अध्याय को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए हो। अतः अब तुम दोनों मनोवांछित लोकों को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महात्मा से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री भगवान कहते हैं, सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। श्रीमद् भागवत गीता पंचम अध्याय सन्नास योग, अध्याय 5 कर्म योग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्तिपूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप में मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो तुम कर्म परित्याग तथा भक्तिमय कर्म कर्मयोग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म का परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। जो पुरुष न तो कर्मफलों से घृणा करता है और न कर्मफल की इच्छा करता है, वो नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाते हैं। अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी हैं, वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है, वो दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। जो ये जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राय प्राप्त स्थान भक्ति धारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों के वश में रखता है, वो सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूखते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वो कुछ भी नहीं कर रहा है। बोलते त्यागते ग्रहण करते ये आंखों खोलते बंद करते हुए भी वो ये जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वो इन सबसे पृथक हैं। जो व्यक्ति कर्मफलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है वो पाप कर्म से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वो समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फलकामी है वो बंध जाता है। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है तब वो नौ द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किया कराए सुखपूर्वक रहता है। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है न ही कर्मफल के रचना करता है। ये सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। परमेश्वर न तो किसी के पापों का ग्रहण करता है न पुण्य का किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक लाभ ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रवृद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। जब मनुष्य की बुद्धि मन श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं तभी वो पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कलमश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनित ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि से देखता है। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों का पहले ही जीत लिया है जन्म मृत्यु के बंधन को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रियों को पाकर विचलित होता है। जो स्थिर बुद्धि है जय श्री श्री राधा मदन मोहन की जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय श्री श्री गौर निताय की जय। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रियों को पाकर विचलित होता है। जो स्थिर बुद्धि है जो मोह रहित है और भगवत विद्वा को जानते हैं जानने वाला है वो पहले से ही ब्रह्म में स्थिर रहता है। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय समूह से समूह की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परम ब्रह्म में एकाग्र चित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग में उत्पन्न होता है। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वो इस संसार में सुखी रह सकता है। जो अंतकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतकरण में ही रमन करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वो सचमुच पूर्ण योगी है। वो परम ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततोगत्या ब्रह्म को प्राप्त होता है। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हैं, जो स्वरूप सिद्ध आत्मसंयमी हैं और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। समस्त इंद्रियों विषयों को बाहर करके दृष्टि को भोगों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपना वायु को नथुनों के भीतर रखकर और इस तरह मन इंद्रिया तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वो योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वो अवश्य ही मुक्त है। मुझे समस्त यज्ञ तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। तो इस अध्याय में हमें क्या हम समझे इस अध्याय में से? अर्जुन भगवान को पूछा कि सांख्य मतलब कर्म त्याग और कर्म में सन्नास और योग में अर्थात कर्म योग में सन्नास कर्म त्याग और कर्म योग में अंतर क्या है, इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? तो भगवान क्या बताया? भगवान बताया दोनों का फल एक ही है। और उसके पश्चात भगवान बोला जो अज्ञानी है, जो अल्प ज्ञानी है, वो ही बोलता है कि सांख्य और योग पृथक है, बल्कि जो ज्ञानी है, जिसको सही ज्ञान है, उसके लिए वो दोनों ही बराबर है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? ये भगवान कैसे समझाए अर्जुन को कि सांख्य और योग एक है, मतलब कर्म को त्यागना और भगवान के लिए कर्म करना, जो कर्म योग है ये एक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कर्म त्याग तभी संभव होता है जब हम भगवान के लिए कर्म करता है। याद है भगवान तीसरे अध्याय में क्या बताए थे? बताए थे कि कर्म न करके क्षण भर के लिए भी कोई नहीं रह सकता है। नहीं कश्चित क्षणमोपी जातु तिष्ठति अकर्मकृत, अर्थात नहीं कश्चित क्षणमोपी, क्षणम अपि, क्षण भर के लिए भी कोई व्यक्ति काम न करके, कर्म न करके रह सकता है। भगवान और भी बताया कि इस शरीर यात्रा के लिए, शरीर को जो कार्य है, शरीर का जो क्रिया है, शरीर को जिंदा रख, जब तक शरीर जिंदा रहता है तब अवश्य होकर भी हम कार्य करते हैं, श्वास लेते हैं ना, खाना पकड़ा है ना पेट में, तो ये कर्म हो रहा है ना। तो कौन बोलेगा कि कर्म किए बिना कोई कर्म संन्यास, कर्म त्याग, कर्म मैं कर्म नहीं करूंगा, ये कोई कह सकता है? या अगर वो सोचता है कि कर्म ना कर वो रह सकता है, कभी संभव होगा? नहीं। तो कर्म त्यागने का मतलब क्या है? अपने लिए कर्म नहीं करना, जो कर्म है वो अपने लिए नहीं करना है, अपना सुख भोग के लिए नहीं करना, परंतु कर्म तो करना ही हो रहा है, हम कर्म किए बिना नहीं रह सकते हैं, तो कर्म हमें करना ही होगा। तो हम अगर अपने लिए नहीं कर्म किया तो उसका मतलब क्या होगा? भगवान के लिए केवल कर्म करना। जो ये भगवान के लिए जब कर्म हो रहा है तो कर्म त्याग हो गया, कर्म त्याग हो गया, और भगवान के लिए जब कर्म हो रहा है तो कर्म योग हो गया। तो अब बताओ कर्म योग और कर्म त्याग में कुछ अंतर है? समझ रहे हो सब? कर्म योग और कर्म त्याग में कोई अंतर है? नहीं। कर्म त्याग का मतलब है भगवान के लिए, भगवान के लिए कर्म करना, और कर्म योग का मतलब है भगवान के लिए कर्म करना। सांख्य योगी पृथक बाला प्रवदन्ति न विपश्चिना। सांख्य का मतलब है ज्ञान, और एक विचार हो रहा है, ज्ञान और योग इनमें भी क्या अंतर है? अच्छा, आज सुबह भागवतम क्लास में कौन कौन था? अच्छा, बहुत अच्छा। तो कौन अध्याय का चर्चा हो रहा है श्रीमद भागवतम में? इस अध्याय में किसका विचार हो रहा है? सांख्य योग का। तो आज जो पाठ हुआ था उसका क्या निर्णय हुआ उस श्लोक में? सांख्य का अंतिम उद्देश्य क्या है? चैतन्य चरण मांग भजन भजश्च मां, मेरे भक्ति करो और या मेरा सेवा करो, मेरा सेवा करो। तो सांख्य का मतलब अंत में क्या है? ज्ञान का परिसमाप्त कैसे हो रहा है? भगवान के लिए सेवा करना। देखो और एक विचार, देखो लोग जो नहीं समझता है वो ये दो गीता, ये गीता गोरखपुर का गीता है, गोरखपुर का गीता का पंचम अध्याय का ये क्या है? इसका ये है संन्यास योग, संन्यास योग। और प्रभुपाद पंचम अध्याय का क्या संज्ञा दिए हैं? प्रभुपाद ने पांचवा अध्याय क्या दिया है, कर्म योग। दोनों में अंतर देखो, क्यों? क्योंकि प्रभुपाद दूसरे को नहीं समझ में आ रहा है पांचवा अध्याय का असल उद्देश्य क्या है। पांचवा अध्याय का असल उद्देश्य है कर्म योग। भगवान क्या कर रहे हैं, मेरे लिए कर्म करो, मेरे लिए कर्म करो। पांचवा अध्याय के में क्या भगवान कर्म त्यागने के लिए बोला है, तो सन्यास जो कैसे हो रहा है? तो इसलिए देखो, ये प्रभुपाद का गीता है, भगवद गीता यथा रूप। यथा रूप का मतलब क्या है? यथा रूप का मतलब है यथा रूप। अगर अंग्रेजी में बताओगे तो बोलेगे एज इट इज, बल्कि हिंदी में अगर बताओगे तो क्या बोलोगे? जैसा के तैसा, यथारूप। यथारूप, यथारूप का मतलब है जैसे श्री भगवान श्री कृष्ण ने बताया और जैसे अर्जुन ने समझा। भगवान बताए हैं, बल्कि भगवान किसके लिए बताए हैं भगवद गीता? अर्जुन के लिए बताया, और सुनने के पश्चात भगवद गीता कौन समझा? अर्जुन ने समझा। तो इसलिए भगवद गीता यथा रूप का मतलब है जैसे भगवान बताया और जैसे अर्जुन ने समझा है। तो इसका प्रभुपाद के गीता जो यथा रूप है, इसका मतलब और इसका प्रमाण क्या है? कोई भी आदमी बोल सकता है मेरा गीता ही सही गीता है ना? दुनिया बाजार में कितने सारे गीता मिलता है आजकल, कितना गीता है? हम कुछ लगभग 30 साल पहले, 35 साल पहले 76 में हम एक ये लिया था, काउंट लिया था, गिनती किया था। उसी समय ही लगभग 250 अंग्रेजी अनुवाद था भगवद गीता का। अब तो और ज्यादा हो गया होगा बाजार में, केवल भारत में ही नहीं, इंग्लैंड में, अमेरिका में, जगह जगह में लगभग 250 अनुवाद हमें मिला था। तो आप देखो, ये 250 भगवद गीता का अनुवाद एक भी भक्त नहीं बनाया भगवान को। वो गीता पढ़ के कोई भक्त नहीं बना, बल्कि श्रील प्रभुपाद का भगवद गीता पढ़ के इस कमरा में, इस मंदिर में यहां बैठे हुए कितने आदमी भक्त बन गए, हाथ उठाओ। तो किसके प्रभाव से ये हुआ? प्रभुपाद की गीता पढ़ने से, पाठ करने। तो ये है इसका प्रमाण कि इस भगवद गीता का सही विश्लेषण व्याख्यान प्रभुपाद जी का गीता से हुआ है। मैं खुद 6-7 भगवद गीता का अनुवाद पाठ किया था। मैं जब पढ़ रहा था तो मैं सोचा मैं बहुत कुछ समझ रहा हूं, भगवदगीता मैं भगवदगीता पाठ कर रहा हूं, भगवदगीता कितना कुछ मैं समझ रहा हूं। बल्कि जब मैं प्रभुपाद का भगवदगीता पढ़ना शुरू किया तब मुझे पता चला कि मैं कुछ नहीं समझा था, कुछ नहीं समझा था। कैसे, क्यों? क्योंकि जो सही, जो असल विषय जो है भगवद गीता का, वो मैं नहीं समझा था। भगवद गीता का मूल विषय क्या है? कृष्ण भगवान है। दूसरा भगवद गीता पाठ करने से वो पता नहीं चलता है कि कृष्ण भगवान है। उनका गीता से क्या पाठ होता है? भगवान निराकार है, कृष्ण भगवान नहीं है। कोई बोलता भी है, वो जो भगवान जो बोल रहा है, कृष्ण जो बोल रहा है, माम एकम शरणं ब्रजो, मेरा शरण नहीं लेना, और अंदर में जो निराकार अव्यक्त है उसको शरण लो, भगवान कह रहे हैं मामेकम शरणम ब्रज, और वो दूसरा उल्टा सीधा बोल रहा है, इसलिए कौन भक्त बनेगा वो पाठ करके। बल्कि प्रभुपाद जी का भगवत गीता पाठ करने से क्या क्या पता चलता है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण ही भगवान है। और भगवत कृष्ण भगवत गीता में श्री कृष्ण क्या उपदेश दे रहा है, उनका भक्त बनने के लिए उपदेश दे रहा है, उनका विरोधी बनने का उपदेश नहीं दे रहा है, कृष्ण का कंपिटिटर बनने का उपदेश नहीं दे रहा है भगवत गीता। बल्कि और कुछ भगवत गीता पाठ करके क्या होता है, भगवान का कंपिटिटर बन रहा है, जो लिख रहा है वो भी भगवान का कंपिटिटर बन रहा है, क्योंकि वो भगवान का वाणी है बल्कि उसका जो ये दे रहा है विश्लेषण दे रहा है वो अपना मन के कल्पना से दे रहा है, ताकि जैसा ये मेरा, ये गीता कृष्ण का नहीं, ये गीता मेरा है। तो ये समझना होगा, सुनने में क्या बुरा लग रहा है, अगर बुरा लग रहा है तो बताओ। देखो साधु का काम है सही सही बताना। इसका एक दृष्टांत ऐसे हम दे सकते हैं, कुछ बीमारी हुआ है, रोग हुआ है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर सही दवाई नहीं दिया, उससे तो रोग का इलाज नहीं हुआ, तो तुम क्या करोगे, उस डॉक्टर से छोड़कर दूसरा कोई डॉक्टर के पास जाओगे, तो डॉक्टर क्या पूछते हैं, क्या पहले कुछ दवाई लिया है, हाँ लिया है, प्रेस्क्रिप्शन दिखाओ, वो देखता है प्रेस्क्रिप्शन गलत है, तो डॉक्टर क्या बोले, फिर उस डॉक्टर के पास चले जाओ, उसका ट्रीटमेंट लो, लेते रहो ना, क्या डॉक्टर बोलेगा उसको मत लेना, ये नया ये प्रिस्क्रिप्शन लो, और जब हम लेते हैं तो हमारा रोग का इलाज हो जाता है, रोग इलाज के पश्चात हमें पता चलता है सही डॉक्टर कौन है। तो वैसे ही भगवत गीता पाठ करके हमें पता चलता है कि भगवत गीता का सही विश्लेषण, सही उपदेश, सही निर्देश कहां से मिल रहा है। इसीलिए प्रभुपाद जी का भगवत गीता का एक विशेष संज्ञा है, वो है भगवत गीता जथारू। हरे कृष्ण गौर प्रेमानंदे हरे, श्रील प्रभुपाद की। भगवान श्री कृष्ण भगवान की।